ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்திஹி சாந்திஹி சாந்திஹி. தோ தேக்கியே, இஸ்மே ஈஸ்வர் சே பிரார்த்தனா கி கயி ஹை. இஸ் அர் ये जो शांति मंत्र का जो अर्थ है उसके साथ हमारा संबंध जुड़े और हम उसके हार्द समझे, इसलिए पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं. ओम स ह ना ववतु है ना, ना ववतु उसमें नव अवतु ऐसा. सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही तेजस्विनौ अधीतमस्तु तेजस्विनौ अधीतम अस्तु मा विद्विषावहि इत्यादि. तो इसमें जो है पांच बातें की गई है. सबसे पहले यह कहा गया कि ओम सह ना ववतु, यानी कि अभिप्राय यह है कि ह स नौ अवतु, हकार जो है वो प्रसिद्धि के लिए, ये बात प्रसिद्ध है. स नौ अवतु, स से अभिप्राय है स यानी परमेश्वर. परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है कि स परमेश्वर नव अवतु. नव यानी आवाम शिष्याचार्य, शिष्य और आचार्य दोनों की रक्षा करे. कौन रक्षा करे? तो कहा परमेश्वर. शिष्य और आचार्य दोनों की रक्षा करे. तब कैसे रक्षा होगी? क्या यहां पर शरीर की रक्षा जैसे कोई बॉडीगार्ड रखते हैं वैसे? नहीं, ऐसा अभिप्राय नहीं है. रक्षा का अभिप्राय है शिष्य को जो विद्या प्राप्त हो वो विद्या की प्राप्ति अविद्या की निवृत्ति तक हो, यानी कि अविद्या की निवृत्ति करने वाली हो. ये नहीं कि केवल पाठ पढ़े और अर्थ ज्ञान न हो तब भी अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती है. इसलिए अविद्या और तत्कार्य की निवृत्ति रूप जो फल है वो फल शिष्य को अवश्य मिले, तभी पठन का मतलब रह जाता, नहीं तो मतलब ही नहीं है. इसलिए शिष्य को अविद्या की निवृत्ति हो, यही जो है परम फल है और उसी से ही रक्षा है. रक्षा का अर्थ है भय का अभाव हो. रक्षा हो यानी कि हम अभय हो जाए. तो अभय कब हो सकते हैं? ब्रह्म विद्या के उदय से ही हम अभय हो सकते हैं. जहां द्वेत है ने वहां भय है, और जहां भय है वहां ये सारे दुख, सारा संसार इसके पीछे लगा हुआ ही है. जो भेददर्शी है उनको अवश्य भय रहेगा ही रहेगा। देखो, और भेद दर्शन कब होता रहेगा? जब अविद्या रहेगी तो भेद रहेगा। भेद की निवृत्ति होना ही अभय है और वही रक्षा है। तो भेद की निवृत्ति कब होगी? भेद यानी कि अविद्या, द्वेत, द्वेत की निवृत्ति कब होगी? जब ये अद्वैत का अनुभव हो, और वो अद्वैत का अनुभव ब्रह्मात्मकत्व बोध हो, और ब्रह्मात्मकत्व बोध केवल उपनिषद से ही संभव है। इसलिए ये जो अद्वैत भाव है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति है, ब्रह्मात्म बोध है, वो शास्त्र एक समधिगम्य है। अन्य किसी भी प्रमाण से इसका ज्ञान संभव नहीं है। ब्रह्म सूत्र का जो तृतीय सूत्र है, प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का तृतीय अधिकरण का जो सूत्र है, शास्त्र योनित्वात्, ये जो परमात्मा है ब्रह्म, वो केवल शास्त्र एक समधिगम्य, अन्य किसी भी प्रमाण से ईश्वर की सत्ता आप नहीं बता सकते। ठीक, ये जो संसार है वो परमात्मा की साबिती है, किंतु परमात्मा है उतने अर्थ के लिए ही साबिती है ये संसार। लेकिन वो परमात्मा कैसा है, उसके स्वरूप ज्ञान के लिए तो ये शास्त्र प्रमाण ही है। इसलिए ईश्वर के दो लक्षण बताए गए हैं, स्वरूप और तटस्थ। तो ये जो संसार है ना, वो परमात्मा का तटस्थ लक्षण है, ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। यत् तो वा इमानि भूतानि जायन्ति, येन जातानि जीवन्ति, यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति, तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। ऐसा कहा गया। इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिससे है, उनको हमारे यहां कहा है ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो इससे निश्चित है कि संसार की उत्पत्ति ब्रह्म से ही है, क्योंकि ये जो संसार का जो स्वरूप है, जैसे भगवान भाष्यकार ने वो सूत्र भाष्य में इस संसार के लिए चार विशेषणों का प्रयोग किया। अब ये चार विशेषण है नाम रूपाभ्याम व्याकृत, अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्त, प्रतिनियत देश काल क्रिया फलाश्रयस्य, और चौथा है मनसापि अचिंत्य। देखिए, आप लोग देखते हैं संसार अनेक कर्ता अनेक भोक्ता से संयुक्त है, और नाम और रूप से व्याकृत है। बताइए कौन ऐसा पदार्थ होगा जिसका कोई नाम न हो और कोई रूप न हो? ऐसा पदार्थ ढूंढ के ले आई संसार में है कोई? अब ये भी निश्चित है कि आप कोई पदार्थ का नाम रखते हैं तो नाम रखने वाला चेतन होगा या जड़ होगा? जड़, जड़ है वो किसी जड़ पदार्थ का नामकरण कर सकता नहीं। और संसार में जो भी पदार्थ है उनका कोई न कोई नाम और रूप जरूर है। तो इससे साबित हो गया कि संसार जड़ से नहीं हो सकता है। बनाने की बात तो अभी दूर की बात है, नाम और जो रूप है, नामकरण ही जड़ से संभव नहीं है, चेतन से ही संभव है। जो लोग ये कहते हैं कि संसार जड़ से उत्पन्न होता है, स्वभाव से उत्पन्न होता है, शून्य से उत्पन्न होता है, उसको ही बुला करके पूछिए कि जो नामकरण है पदार्थ का, क्या वो चेतन ने किया या जड़ ने किया, तो क्या कहेंगे? क्या वो कोई भी ये कह सकते कि नहीं वो भी जड़ ने किया? नहीं कहे तो वो संभव ही नहीं है। नाम रूपाभ्याम व्याकृत है और अनेक कर्ता और अनेक भोक्ता से संयुक्त है संसार। देखिए यज्ञ करते हैं तो उसमें जो यजमान है वो कर्मफल का केवल कर्ता भी है और भोक्ता भी है, और जो पुरोहित है वो केवल कर्ता मात्र, उसको फल नहीं मिलता। यज्ञ का जो फल है वो तो यजमान को ही मिलता है, और यदि ऐसा होता तो कोई करता यज्ञ, पुरोहित ले जाता तो पुरोहित तो करवाता है, और करता कौन है? यजमान है। इसलिए अनेक कर्ता अनेक भोक्ता से संयुक्त संसार है। प्रतिनियत देश, प्रतिनियत काल, प्रतिनियत क्रिया और प्रतिनियत फल का आश्रय यह संसार है। देखो पदार्थ का देश भी प्रतिनियत है, कृष्ण मृग सर्वत्र नहीं मिलते। सभी टीकाकारों ने ये प्रतिनियत देश का उदाहरण कृष्ण मृग दिया है कि कृष्ण मृग है वो सर्वत्र नहीं मिलता है, उनका देश नियत है। तो किसी चीज को नियत जो करना है वो जड़ कर सकता है कि चेतन कर सकता है? चेतन ही कर सकते। और इस संसार में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसकी क्रिया निश्चित है, काल निश्चित है। देखिए काल जैसे बलाका है, वो जब मेघ की गर्जना होती है तभी वो गर्भ धारण कर सकती है, नहीं तो नहीं करती है। तो उनका जो काल है वो निश्चित है, वो जड़ से संभव नहीं है, वो चेतन से ही संभव है। बलाका गर्भादय आचार्यों ने कहा वहां भाष्य में। और प्रतिनियत क्रिया भी प्रतिनियत है। देखिए जैसे कोकिला रवादय, कोयल की आवाज बारह मास नहीं सुनाई पड़ती है, उसका निश्चित समय रहता है। और फल, फल भी नियत है। देखिए कुछ ऐसे कर्म है जिस कर्म का फल मरणोत्तर ही है, कुछ ऐसे कर्म है उनका फल इस जीवित अवस्था में मिल जाता है। तो ये जो फल है वो भी नियत है, वो भी जड़ से संभव नहीं है। और चौथा विशेषण में तो भगवान भाष्यकार कहते हैं मनसापि अचिंत्य, ये जो संसार है उसमें ऐसे ऐसे रहस्य आश्चर्य है जिसका मन से आप चिंतन तक नहीं कर सकते। मन से भी अचिंत्य है, ऐसे संसार को कोई जड़ बना सकते? इस संसार के स्वरूप को देखते हैं तो कोई सामान्य जीव भी नहीं बना सकता है, कोई लोकपालादि से भी संभव नहीं है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एकमात्र परमात्मा से ही संभव है। इसलिए उस परमात्मा का जो ज्ञान है और उस परमात्मा के साथ हमारा जो एकत्व है वही हमारी रक्षा है। इसलिए परमात्मा से यहां जो प्रार्थना की गई कि सह नौ अवतु, स माने वह परमात्मा हमारी, अब इस समय हम ये जो ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, ये उपनिषद का जो श्रवण कर रहे हैं, वो श्रवण जो है हमारा साक्षात्कार पर्यंत हो, ये नहीं कि हम श्रवण करके छोड़ दें, यहां तक करना। मनन और निधिध्यासन पूर्वक यदि श्रवण हो तो साक्षात्कार तुरंत हो जाएगा। इसलिए हम श्रवण करें, श्रवण से और आगे बढ़े और साक्षात्कार पर्यंत हमको फल मिले और उससे ही हमारी रक्षा है। इसलिए यहां भावना की गई कि नव यानी कि आवाम शिष्याचार्यो, हम शिष्य और आचार्य की परमेश्वर रक्षा करे। विद्या स्वरूप प्रकाशनेन रक्षतु हो, विद्या का जो स्वरूप है उस स्वरूप का प्रकाश करते हुए हमारी रक्षा करे। ये नहीं कि डंडा लेकर के खड़ा रहे, देखो ये रक्षा है, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें तो यहां तक की करें, ऊपर ऊपर की नहीं, ये रक्षा का अभिप्राय। देखो फिर दूसरा वाक्य है, उसमें क्या कहा, देखो सहनौ भुनक्तु, वहां पर भी वही ह अर्थ का, ह का अर्थ है प्रसिद्ध और स का अर्थ है वो परमेश्वर। जो प्रसिद्ध परमेश्वर है वो नव यानी आवाम शिष्याचार्यो, हम दोनों शिष्य और आचार्य की भुनक्तु यानी विद्या का फल हम भोगे। विद्या का फल क्या है? विद्या का फल है इस संसार की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति, अविद्या और तत्कार्य की निवृत्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये विद्या का फल है। वो विद्या का फल हमको मिले, फल तक हमको हमारा योजन करे, फल के साथ हमको जोड़े शिष्य और आचार्य दोनों को। और देखो तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, सहवीर्यम करवा वही, यहां पर जो है ना सह शब्द का अर्थ अलग अलग नहीं है। पहले दो पंक्ति में तो सह का ह और स ऐसा कहा, ह अलग है, हकार अलग है और सकार अलग है, वहां पर सकार यानी स से परमात्मा ग्राही है और यहां सह का अर्थ है साथ साथ मिलित्वा। शिष्याचार्यो परस्परम मिलित्वा, हम शिष्य और आचार्य परस्पर एक दूसरे से मिलकर के वीर्यम करवा वही, वीर्यम का अर्थ है विद्याकृत सामर्थ्यम, विद्या से जो प्राप्त होने वाला जो सामर्थ्य है वो करवा वही, करवा वही का अर्थ है निष्पाद या वही, हम विद्याकृत जो सामर्थ्य है वो हम साथ साथ संपादन करें। और विद्याकृत सामर्थ्य क्या है? विद्याकृत सामर्थ्य अनिशक्ति। देखिए हमारे पास यदि विद्या आ जाती है तो शक्ति बढ़ जाती है ना। देखिए तो यहां तो ब्रह्म विद्या की बात है, व्यवहार में ही देखो जो अधिकाधिक पढ़ा हुआ है वो चैम्बर में ही बैठा रहता है और उसके नीचे कई एक कर्मचारी काम करते हैं और सबसे वेतन कौन पाते? वो जो ऑफिस में बैठे हैं बॉस, वो ही पाते, बैठे ही रहते हैं, लेकिन वो उपयोग किसका कर दे? बुद्धि का उपयोग करते हैं, उन्होंने जो पढ़ा है उसका उपयोग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको बहुत सबसे ज्यादा तनख्वाह रहती है, पगार रहता है। तो विद्याकृत सामर्थ्य वो व्यवहार की बात हुई, यहां पर जो विद्या है यहां विद्या से अभिप्राय है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का जो सामर्थ्य है वो ये है कि हम जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंचे, जीते जी हम मुक्त होवे और जीते जीते हम संसार से अलिप्त रहे और संसार का लेप ना हो। ये और ये नहीं कि केवल शिष्य को ही मिले, शिष्य और आचार्य दोनों साथ में ये बल को प्राप्त करें। और ये कब हो सकता है कि जब परस्पर द्वेष न हो, इसलिए आगे वो प्रार्थना भी की जाएगी। लेकिन बीच में एक बात आती है, अधितम तेजस्वी अस्तु। देखिए एक प्रार्थना और की गई परमेश्वर से, कहा कि नव अधितम तेजस्वी अस्तु। अभिप्राय है कि आवाभ्याम शिष्याचार्यायाम, शिष्याचार्याभ्याम, हम दोनों शिष्य और आचार्य के द्वारा जो अधीत है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो जो है तेजस्वी अस्तु। तेजस्वी यानी अतिशयेन वीर्यवद अस्तु, अतिशय वीर्यवद सामर्थ्यशाली हो। अर्थात यहां पर तेजस्वी से अभिप्राय है सफल हो। हमारा जो अध्ययन है वो केवल अध्ययन तक निश्चित सीमित न रह जाए, वो फल तक पहुंचे, हम फल भी प्राप्त करें। और वो संभव कब है, जब शिष्य और आचार्य के बीच में परस्पर द्वेष का अभाव हो। इसलिए अंत में कहा गया मा विद्विषा वही, मा यानी मत निषेधार्थक है, विद्विषा वही, हम लोग परस्पर द्वेष न करें। और शिष्य और आचार्य के बीच में जो एकता रहे, द्वेष का अभाव रहे, तभी वो जो है ये गुरु परंपरा भी चलेगी और ये जो प्राप्त विद्या है उसका फल भी तभी ही प्राप्त होगा। अंत में जो ओम शांति 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 जो तीन बार निर्वचन है, वो जैसे पहले कहा वैसे ही आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक दुखों की निवृत्ति की प्रार्थना इसमें की गई। हरिओम तत्सतम।